नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू। 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की भी मतगणना जारी। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। मौसम विभाग ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में आज गरज चमक के साथ वर्षा और ओले पड़ने का अनुमान जताया। अमरीका होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती की जाएगी। शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
कुछ घंटों में पश्चिम बंगाल की राजनीतिक किस्मत तय होगी। 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतगणना सुबह 8 बजे राज्य भर में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। 293 निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम दिन भर आने की उम्मीद है, जबकि फलता निर्वाचन क्षेत्र में इस महीने बाद में पुनः मतदान होगा। राज्य भर की 77 मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। स्ट्रांग रूम और मतगणना हॉल में सीसीटीवी निगरानी और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चुनाव अभियान और रिकॉर्ड मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें आज के फैसले पर है। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
तमिलनाडु में मतगणना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए चलते हैं चेन्नई में हमारे संवाददाता सुशील तिवारी के पास। सुशील, मतगणना के बीच राज्य में सुरक्षा के क्या प्रबंध किए गए हैं?
देखिए मुकेश, सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है। 3 स्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और रूट को डाइवर्ट किया गया है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि तमिलनाडु जो है वो राजनीतिक रूप से बड़ा सक्रिय जो है प्रदेश है, तो बड़ी संख्या में जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो भी जो बाहरी दायरा है उसके आसपास खड़े नजर आ रहे हैं। उनकी उत्कंठा है, उनकी इच्छा है कि वो जल्दी से जल्दी जान सकें कि उनके राजनीतिक नेता, उनके नेताओं का क्या भविष्य हो रहा है। तो बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचने लगे हैं। हम अभी थोड़ी देर पहले जो है चेन्नई में जो 3, वैसे तो पूरे राज्य में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन चेन्नई में 3 मतगणना केंद्र है, लॉयला कॉलेज, अन्ना यूनिवर्सिटी और क्वीन मैरीज कॉलेज। तो हम क्वीन मैरीज कॉलेज के पास थे, वहां जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम थे। लेकिन ये मरीना बीच के पास है, बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच चुके हैं और लोगों में जबरदस्त उत्कंठा है।
जी सुशील, ये भी बताइए कि आज जो मतगणना हो रही है उसमें किन किन प्रमुख उम्मीदवारों की साख दांव पर है?
देखिए मुकेश, अगर हम बात करें तो डीएमके का जो सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस है एसपीए, उसके जो नेता है वो एमके स्टालिन, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री भी, निवर्तमान मुख्यमंत्री जिन्हें कहा जाए, वो कोलाथुर सीट जो कि चेन्नई में ही है वहां से लड़ रहे हैं। तो उनके चुनाव परिणाम पर सबकी निगाहें होंगी। जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं ई पलानीसामी, वो इडापड्डी जो है सेलम डिस्ट्रिक्ट में है, सेलम जिले में है, वहां से लड़ रहे हैं। और केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन जो है वो अविनाशी सीट से लड़ रहे हैं जो कि तिरुपुर में है। इसके अलावा अगर अन्य प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो जोसेफ विजय जो है टीवीके पार्टी का उनका तमिल वेत्र कड़गम जो पार्टी है उनके नेता 2 सीटों से लड़ रहे हैं, पेरम्बूर जो कि चेन्नई डिस्ट्रिक्ट में ही है और त्रिची जिले की त्रिची ईस्ट, त्रिची पूर्व की जो सीट है वहां से वो 2 जगह से लड़ रहे हैं। जो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है उदय निधि स्टालिन, वो चेपक सीट से लड़ रहे हैं। और एक अन्य महत्वपूर्ण नाम डॉक्टर तमिल ईसाई सौंदर राजन का है जो कि मैलापुर जो चेन्नई की ही सीट है, ये वर्तमान ये पूर्व में तेलंगाना और पुडुचेरी की राज्यपाल रह चुकी हैं। तो वो भाजपा नेता है, वो इस बार चुनाव लड़ रही है मैलापुर जो चेन्नई की सीट है वहां से। तो ये महत्वपूर्ण लोग हैं जो इस बार चुनाव मैदान में हैं, जिनके नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मुकेश
जी, सुशील, आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए 6 केंद्रों पर मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है। केंद्र शासित प्रदेश में 294 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
पहले चरण में सभी 6 मतगणना केंद्रों पर 17 विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती की जाएगी। इनमें पुदुचेरी क्षेत्र के 12 निर्वाचन क्षेत्र, कराईकाल के 3 और माहे तथा यानम का एक एक निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। शेष 13 निर्वाचन क्षेत्रों की गिनती दूसरे चरण में की जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह लगभग 9:30 बजे तक आने की उम्मीद है। ईवीएम और वीवीपैट की गिनती के लिए कुल 166 टेबल और डाक मतपत्रों के लिए 35 टेबल स्थापित किए गए हैं। मतगणना केंद्रों में कड़ी सुरक्षा और प्रवेश नियंत्रण के उपाय लागू हैं। चुनाव अधिकारियों द्वारा जारी QR कोड आधारित पहचान पत्रों के सत्यापन के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मतगणना केंद्रों पर मोबाइल फोन जमा करने की व्यवस्था भी की गई है। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
और असम में मतगणना से जुड़ी जानकारी के लिए रुख करते हैं गुवाहाटी में मौजूद हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश जी, राज्य में मतगणना के बीच क्या माहौल देखा जा रहा है?
जी, असम में विधानसभा चुनाव के मतगणना कुछ समय पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई है। राज्य में इस बार 85.96% मतदान दर्ज किया है, जो पिछले विधानसभा चुनावों में सबसे अधिक है। राज्यभर में 40 मतगणना केंद्रों पर गिनती की जा रही है। अधिकांश जिलों में जिला मुख्यालय पर एक एक केंद्र है, जबकि कोकराझार, तिनसुकिया, जोरहाट में 2-2 तथा दोगांव में 3 मतगणना केंद्र है। पूरी प्रक्रिया पर 126 मतगणना प्रेक्षक कड़ी निगरानी रख रहे हैं, जिनकी सहायता के लिए लगभग 6000 मतगणना कर्मी और 2300 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। 126 सदस्य असम विधानसभा के लिए कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 64 है। जी
राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर केरल में भी कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना हो रही है।
जनादेश 2026।
असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
आज सुबह 8:30 बजे से
मतगणना की पल पल की खबर,
हर सीट की सटीक जानकारी,
संवाददाताओं से ताजा हाल
और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
जनादेश 2026।
5 राज्यों की 7 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों की मतगणना भी शुरू हो गई है। ये 7 सीट गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे, दक्षिण महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कुरीडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि यह दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है और दशकों से इस मार्ग से यात्रा जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संदर्भ में नेपाल के विदेश मंत्रालय के सीमा संबंधी दावों के बारे में ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस संबंध में भारत का रुख स्पष्ट है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे दावे न तो न्यायसंगत हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों तथा सबूतों पर आधारित हैं। प्रवक्ता ने कहा कि भारत द्विपक्षीय संबंधों के सभी मुद्दों पर नेपाल के साथ सार्थक बातचीत के लिए तैयार है। होर्मुज में फंसे जहाजों के लिए अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाजों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ देश प्रभावित हुए हैं और अमरीका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने में सहयोग करेगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार इसके लिए मिसाइल नाशकों, 100 से अधिक विमानों और 15,000 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि इस प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वालों के लिए सख्ती से निपटा जाएगा। फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने होर्मुज से जहाजों की आवाजाही लगभग बंद कर रखी है। उधर अमरीका ने भी ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी है। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव पर अमरीका सहमत नहीं है। ईरान के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ईरान के प्रस्ताव पर अमरीकी जवाब की समीक्षा की जा रही है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। एक रिपोर्ट।
ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो अपने 14 सूत्री प्रस्ताव पर अमेरिका की प्रतिक्रिया की समीक्षा कर रहा है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि योजना का उद्देश्य शत्रुता को समाप्त करना है और इसमें परमाणु मुद्दों का कोई जिक्र नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान परमाणु प्रतिबंधों से संबंधित मांगों को पूरा नहीं करता। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध विराम के बावजूद लड़ाई तेज हो गई है और इसराइली सेना ने हाल के दिनों में हिजबुल्ला से जुड़े दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया है। इस बीच हिजबुल्ला भी इसराइली सैनिकों पर रॉकेट और ड्रोन से हमले जारी रखे हुए है। उधर मध्यस्थों के माध्यम से राजनयिक प्रयास भी जारी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर 3 दिन की उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि संगोष्ठी परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक के प्रदर्शन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में कल गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
धन्यवाद मुकेश। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, नतीजे आज, निगाहें बंगाल पर। पत्र के अनुसार मतदान केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, देश की राजनीतिक दिशा तय करेंगे तमिलनाडु बंगाल के चुनाव परिणाम। पत्र के अनुसार जनादेश आज, 5 प्रदेशों में दलों की धड़कनें तेज। हिंदुस्तान ने फलता में पुनर्मतदान शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, निर्वाचन आयोग के इस निर्णय की अनुगूंज पूरे देश में पहुंचनी चाहिए कि बाहुबल के सहारे मतदाताओं को डराने और मतदान को बाधित करने का क्या नतीजा हो सकता है। दिल्ली में एसी से लगी आग में 9 लोगों की मौत पर हिंदुस्तान का शीर्षक है, एसी बना काल, 9 को लील गया। नव भारत टाइम्स के अनुसार बुजुर्ग पेरेंट्स को बचाने अंदर दोबारा गई फिर लौट ना सकी। दैनिक जागरण ने आग का सिलसिला शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, गर्मियां बढ़ते ही घरों, कारखानों और अन्य स्थलों पर आग लगने की घटनाओं का सिलसिला तेज होना इसलिए चिंताजनक है क्योंकि अभी तो तापमान और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि आग लगने की ज्यादातर घटनाएं एसी में ब्लास्ट या शॉर्ट सर्किट के कारण हो रही है। राजस्थान पत्रिका ने नया सवेरा शीर्षक से लिखा है, जब आक्रोश बन गया राष्ट्र संकल्प तो आतंक पर फिर हुआ निर्णायक प्रहार। पहली बार तैनात हुई ऑल वुमन कॉम्बैट टीम ने मोर्चे पर दिखाया जोश, दुनिया को बताया अब और नहीं, ऑपरेशन के बाद सामने आई शौर्य गाथाएं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, लिपुलेख पर भारत की नेपाल को 2 टूक। पत्र के अनुसार विदेश मंत्रालय ने नेपाल के दावों को खारिज करते हुए एक तरफा और अनुचित बताया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब हर तरह के मौसम में धरती के कोने कोने पर भारत रख सकेगा दृष्टि। दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि कैलिफोर्निया से हुआ लॉन्च, चीन पाक सहित हर देश की छोटी बड़ी गतिविधि की होगी निगरानी। देशबंधु के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर बोले संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अंतोनियो गुतरश, तमाम तरह की स्वतंत्रता प्रेस की आजादी पर टिकी, इसके बिना ना तो मानवाधिकार संभव है ना ही शांति, पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करने का आह्वान किया।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, असम, पश्चिम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू। 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों की भी मतगणना जारी। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। मौसम विभाग ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में आज गरज चमक के साथ वर्षा और ओले पड़ने का अनुमान जताया। अमरीका हॉर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।